الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، رواہ ابو داؤد۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، یعنی کہ ہی لو فار اللہ، اور اب غزل اللہ اور اللہ ہی کے لیے بغض کیا کسی سے اگر کرنا بھی تھا، اور وہ اعطى للہ، اور اگر کسی کو کچھ دیا، یعنی کہ کچھ ڈونیٹ بھی کیا، تو وہ اللہ کے لیے کیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ منع للہ، اور اگر کسی کو منع کیا، کسی نے کچھ مانگا اور نہیں دیا اسے، کسی کام سے دور ہوا بھاگا، تو وہ بھی صرف اللہ ہی کی وجہ سے دور ہوا، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو یہاں ایمان کی بات چل رہی ہے کہ اصل میں ایمان کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے اصل میں شروع اسلام میں تو جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ اسلام ہے۔ اب بات یہ ہے، جو پوری اسلام کی جو کوڈ، جو گائیڈ لائن ہمیں دی گئی ہے قرآن کی شکل میں، اس میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم اس قرآن کو کھولتے ہیں تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے کہ لا ریب فیہ، یہ ریب جو لفظ ہے، اسے ہم ٹرانسلیٹ جب کرتے ہیں کہ دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ، دیر از نو فالٹ ان اٹ، یا کچھ بھی اس طرح کے ورڈز، کوئی شک کی بات نہیں ہے اس کتاب میں۔ یہ لفظ شک اردو زبان میں تو بہت ایزیلی براڈر ٹرمز میں یوز ہوتا ہے، بٹ عربی زبان میں شک کے لیے بھی ڈفرینٹ کائنڈز آف ورڈز آتے ہیں۔ اس کی فصاحت اور بلاغت عربی کی ایک ایسی ہے جس کے اندر اتنی ڈیٹیلڈ اور اتنے ڈفرینٹ آپشنز موجود ہوتے ہیں ایک ایک مائنر انٹریکیٹ ڈیٹیل کو سمجھانے کے لیے۔ اب یہاں خوبصورتی اس آیت میں یہ ہے کہ شک جو ٹرانسلیٹ ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے عربی زبان میں لفظ شک بھی آتا ہے، دوسرا لفظ شک کے لیے مریا بھی آتا ہے، اور تھرڈ یہاں پہ جو یوز ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب، یہ ریب بھی شک کے معنی میں ہی آتا ہے۔ اس کے اندر اگر ڈفرینس سمجھنا ہو سب سے پہلے، کیونکہ یہ ضروری ہے آگے چلنے کے لیے، تو شک کین بی لوزلی ٹرانسلیٹڈ ایز، فار ایگزامپل کہیں کوئی خبر سنتا ہے کہ یہ فلاں جگہ چوری ہو گئی، یا فلاں جگہ کوئی رابری ہو گئی، ڈکیتی پڑ گئی، یا فلاں جگہ کوئی قتل ہو گیا، دیر سسپیکٹ، جس کو کہتے ہیں کہ نامعلوم افراد، ان نون پیپل، تو اب آپ کو کسی ایک براڈر، کسی کمیونٹی پہ، کسی گینگ پہ، کسی ایتھنک ڈائیورسٹی کے کسی کانٹیکس کے اندر کوئی بندہ شک کرتا ہے کہ یہ فلاں لوگوں نے کیا ہوگا، تو یہ شک سے ایکچولی اسے عربی زبان میں شک کہا جاتا ہے کہ آپ کو بس شک ہے کچھ بھی کسی چیز کے اوپر، کہ جی یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے اور ایسے نہیں بھی ہو سکتا، دیر آر بوتھ پاسبلٹیز ان اٹ۔ پھر اس سے ایک ہائر ٹرم میں ہوتا ہے کہ لفظ آتا ہے میریا، کہ ایک جگہ، فار ایگزامپل ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، کسی جگہ پہ کوئی رابری ہوئی، چوری ہوئی، اور اس چور کو کچھ لوگوں نے دیکھ بھی لیا یا آئیڈینٹیفائی بھی کر دیا کہ ان لوگوں نے کیا ہے یہ۔ اب ظاہر ہے تو یہ شک کا ایک اسٹرانگر ٹرم ہوگا، جسے عربی زبان میں مریا کہا جائے گا، کہ یہاں پہ وہ شک جس کے بارے میں کافی ایک دلائل یا قرائن یا جو اس کے ایکسٹرنل ریزننگ ہے وہ اس کی طرف امپلیکیٹ کرتی ہے کہ پاسبلی یہ شک کافی ریئل ٹرمز میں پاسبل ہے، کہ ایسا ہی ہے کہ انہی لوگوں نے یہ فار ایگزامپل کرائم کیا تھا، اور آپ کو شک بھی ہے، لیکن آف کورس دیر از نو پروف، اس کا کوئی پروف نہ ہو، لیکن کچھ اور ایسے ایکسٹرنل ریزننگ ہو جس کی وجہ سے کسی خاص کسی بندے کے اوپر ہی شک گیا کہ ہاں یہ کام اس بندے نے کیا ہوگا۔ आपको किसी और वजह से पता है कि ये इसने किया होगा, बट आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि इसने किया होगा। तो इसके लिए अरबी ज़बान में रईब का लफ्ज़, मिरिया का लफ्ज़ आएगा, सॉरी। और थर्ड फॉर्म ऑफ शक जो होगा, जो डाउट होगा, ये अरबी ज़बान में कहते हैं इसे रईब, यानी कि एक माइनर से माइनर आपके दिमाग में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, यानी कि सॉर्ट ऑफ आपको पता होगा आपके सामने किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे को मार दिया, कत्ल कर दिया, या आपके सामने आपके किसी ने चोरी की, आपकी ही से ही कुछ चुराया, कुछ छीना कोई फॉर एग्जांपल, या आपके सामने किसी भी पर्टिकुलर बंदे ने एक सर्टन काम किया। अब आपको तो पता है कि इसी ने किया है, बट स्टिल आपके पास ये प्रूफ नहीं है, या आप फॉर वट एवर रीजन उसको किसी, जाहिर है बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ नहीं करने की ज़रूरत होती, बस ज़िंदगी में बस शक होता है कि इसने किया होगा। अब आपको यानी इस लिटरली इतने स्ट्रॉन्गर फॉर्म में ये चीज़ अंडरस्टैंड आप कर रहे होते हैं, एक बंदा कर रहा होता है कि देर इज़ नो डाउट कि इसी बंदे ने ये काम किया है, इसे अरबी ज़बान में रईब कहते हैं। कि तो यानी कि आपको इतना सा भी, जो माइनर सा भी अगर जो कोई डाउट दिमाग में हो सकता है कि यार इसकी कोई वजह होगी, इस बंदे ने किया, इसकी कोई ख़ास वजह होगी, तो वो डाउट भी कुरान के फॉर्म में जब कुरान सामने आया तो ला रही बफ़ी, इसके अंदर वो डाउट भी मौजूद नहीं है। यानी कि इतनी एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, और इतनी कंप्लीट एक, जैसे कहते हैं, नज़लना अलैकल किताब तिबयान लिकुल्ली शय, इसमें हर चीज़ ऐसे वाज़े तौर पर दलील के साथ बयान की गई है कि इसमें वो माइनर सा जो रईब है, जो शक की बिल्कुल लीस्ट बिट ऑफ फॉर्म है उस डाउट की, वो भी इस किताब में मौजूद नहीं है। तो इसी से हमें पता चलता है कि ईमान असल में है क्या। और जैसे यहाँ पे क्या गया, वमन अब गज़ा, वमन अहब्बा लिल्लाही व अब गज़ा लिल्लाही, अब वो अल्लाह के लिए जब वो उसके दिमाग में वो रईब भी नहीं रहता और वो इस कुरान को पढ़ता है और इस पर अमल करना शुरू करता है, तो फिर वो मन अहब्बा लिल्लाही, फिर वो अल्लाह के लिए किसी चीज़ को पसंद करता है या चाहता है, या वॉन्ट सम टू बी विद समबडी या टू हैव समबडी या समथिंग, जो भी उसे ज़िंदगी में चाहिए, वह अब गज़ा लिल्लाही। और जिस चीज़ को वो बुरा समझता है, उसे बोग्ज़ रखता है, उसे डिस्पाइज करता है, तो वो अब अल्लाह के लिए सिर्फ करता है, आता लिल्लाही। और अगर कुछ किसी को देता है अल्लाह के लिए देता है, वह मना लिल्लाही, और किसी चीज़ से मना करता है फिर वो अल्लाह ही के लिए करता है। और वह कद इस्तकमल अल ईमान, वो अपने ईमान को कंप्लीट कर लेता है बंदा, तो उसके दिमाग में बिल्कुल माइनर सा भी डाउट या रईब मौजूद नहीं होता जब वो कुरान पे इस तरह बिलीव करता है। और ये वो मोमिन की निशानी होती है, क्योंकि वरना तो बहुत सारे काफिर हैं, बहुत अच्छे दीनी काम भी कर, सॉर्ट ऑफ अच्छे, यानी जिसको कहते हैं एथिकली रिस्पॉन्सिबल काम करते हैं, डोनेशंस देते हैं, चैरिटीज़ करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, आपस में सोशल वेलफेयर सिस्टम के मौजूद हैं पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो लेकिन एक हमारे, हमें याद पड़ता है, एक दोस्त था हमारे साथ यूनिवर्सिटी में, तो ही वॉज़ अ नॉन मुस्लिम फ्रॉम अ कैथलिक बैकग्राउंड, वो क्रिश्चियन था जाहिर है, उसने बाइबल वाइबल में उस, तो इन लोगों का दे डोंट बिलीव इन इट बिकॉज दे फाइंड सो मैनी मिसकंसेप्शंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस इन इट, कि वो जस्ट यू नो एट अ टाइम आता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो वो क्रिश्चियन भी हैं वो अपने आप को बस नाम का क्रिश्चियन होते हैं, बट उनका ईमान तो कुछ होता ही नहीं, हो तो एथियस्ट एक कम्युनिटी से सॉर्ट ऑफ बिलोंग करते हैं, चाहे वो एडमिट करते हैं या नहीं, वो अपनी रिलीजियस बैकग्राउंड में क्रिश्चियनिटी भी लिखते हैं, बट माइंड सेट उनके ऐसे एथियस्ट होते हैं। तो ऐसा ही एक हमारा जानने वाला दोस्त है, बहुत अच्छा आदमी है, और बहरहाल वो उधर बॉस्टन में यूनिवर्सिटी में ही, वो कहता था यार फराज मैन आई डोंट बिलीव इन ये, देर इज़ नो डेथ, देर इज़ नो नथिंग, यू नो दिस इज़ ऑल जस्ट अ मेड अप थिंग। अब वो इवन दो देखता है लोगों को मरते हुए, फ्यूनरल पे जा रहा है, वहाँ पे सेरेमनीज अटेंड कर रहा है, चर्च जाता है कभी ना कभी, और फिर ग्रेवयार्ड्स विजिट करता है अपने जो लव्ड वंस को, उन्हें दफनाता है, सब कुछ अपने आँखों के सामने देखता है, बट वो कहता है देर इज़ नो डेथ या नो नथिंग। तो आई वॉज़ वेरी शॉक्ड एंड आई वॉज़ लाइक के यार दिस इज़ दिस मैन, ही इज़ सच अ नाइस गाय, ये इतना अच्छा आदमी है, ये इतने अच्छे काम करता है, सब सोशल जो वेलफेयर किसी सिस्टम के अंदर अगर कोई अच्छे लेवल का बंदा होता है तो वो ये वो उसमें यकीनन शामिल होगा, बट ये ईमान नहीं लाता। तो इसीलिए यहाँ मुसलमानों में भी वी हैव दिस सर्टन प्लेग, दिस प्रॉब्लम दैट वी फेस टुडे इज, तो हमें अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, या अय्युहल्लज़ीन आमनू आमिनू, के ए ईमान वालों ईमान लाओ। अब ईमान वालों से कहा जा रहा है कि ईमान लाओ, यानी कि इस आयत को हम ट्रांसलेट करें, ओ यू हु बिलीव, ओ मुस्लिम्स बिलीव, वाई, मतलब मुस्लिम जो ऑलरेडी ईमान ला चुका है उससे क्यों कहा जा रहा है आमिनू? उसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे सूरह हुजरात में आता है कौलतिल अरबु आमन्ना, ये लोग आगे कहते हैं हम ईमान ले आए। कुल, इनसे कहें ला तुमिनू, तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए। उनसे यानी एक बंदा आगे कह रहा है मैं ईमान लाया, बट उससे क्या कहो, कहो अल्लाह कह रहे हैं कि तुम ईमान नहीं लाए। वलाकिन कुलू असलमना, तुम सिर्फ ये कहो कि हम इस्लाम लाए हैं, हम मुसलमान हो गए हैं, ठीक है। अब तुम नमाज़ रोज़ा हज ज़कात अगर ये करते रहोगे तो अल्लाह ने कहा ला यल्तिकुम मिन आमालिकुम शैया, तुम्हारे आमाल रद्द नहीं इंशाल्लाह होंगे, और तुम्हें एक ना एक दिन, क्योंकि तुम कलमा आफ्टर ऑल अगर पढ़ लिया और अब नमाज रोज़ा हज ज़कात करते रहे तो तुम जन्नत में इंशाल्लाह ज़रूर जाओगे, और यू विल गेट द रिवॉर्ड फॉर यू ऑल योर नमाज रोज़ा हज ज़कात। बट जो ईमान वाले होते हैं वो तो फिर बिलीव करते हैं, जैसे आमिनू करते हैं, यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ये फिर वो लोग होते हैं बिल्लाह आमिनू बिल्लाह व कुतुबी व रुसुली वल यौमिल आखिरी व शर्री व खैरी, ये सब चीज़ों पर ईमान होता है, उनका बिलीफ होता है, और जब वो ऐसा करते हैं तो इस्तकमल अल ईमान, फिर उनका ईमान बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। और इसी को हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की भी दूसरी हदीस से पता चलता है, जिसमें उन्होंने कहा अफजल अमाल अलहब्बुल फिल्लाह वलबुग्ज़ु फिल्लाह, क्या जो अफजल सबसे अफजल अमाल हैं वो क्या है कि अल्लाह के लिए हुब यानी मोहब्बत और जाना, और बुग्ज़ फिल्लाह और अल्लाह के लिए ही सिर्फ बुग्ज़। अब यहाँ देख इसमें दूसरी भी एक रिवायत से पता चलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह से पूछा कि तुम मेरे लिए क्या करते हो, तो इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि आपके लिए नमाज़ पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उन्होंने अपने जो अमाल करते थे अल्लाह के लिए वो बताए अल्लाह को। तो इस पर अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया ये सब कुछ तो तुम अपने दर्जे बुलंद करने के लिए करते हो, यानी जस्ट टू अक्वायर योर ओन हायर एंड हायर स्टेटस या स्टैचर या रिवॉर्ड तुम ये अमाल करते हो, मेरे लिए अगर तुमने कुछ करना है तो खुब फिल्ला व बुग्स फिल्ला करो। यानी कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा कि मेरे लिए जो काम है वो करने का ही क्या है, अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए ही बुग्स। तो वो अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए बुग्स, ये ईमान है, ये वो ईमान है जिसके लिए कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, तुम ईमान लाओ। अब अमाल तो मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़ाहिर है इतने करते थे और वो तो अंबिया में से थे, लेकिन बहरहाल ये गौर करने की बात यही है कि ईमान जब होगा तो फिर क्या, जैसे दूसरी एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की जो रिवायत है उससे उसमें क्या आता है कि अलमुस्लिम मन सलिम अलमुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, के मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान सेफ रहें सिक्योर रहें, वलमुमिन मिन मन अमिनहुन्नास, और मोमिन वो है जिससे लोग अपनी जानों और मालों को मामून समझें, यानी कि आमिना उन्नास अला दिमाहिम व अमवालिहिम, उनके जो जान माल उनकी चीज़ है वो दूसरे उस मुसलमान से महफूज होगी, तब वो सही मोमिन कहलाने का लायक होगा बंदा। यानी आजकल तो अगर हम देखें तो मुसलमानों में तो ख़ास तौर से ये बहुत ही एम्पल हमें मिलेंगे ऐसी एग्ज़ाम्पल्स के चोरी कर रहे हैं, डंडी मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं अपने बाज़ारों में, अपने जो हमारे बिजनेस सेंटर्स हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ भी कोई कर रहा है, और ज़बान की कोई वैल्यू नहीं है, झूठ बोलना हमारे लिए कोई बिग डील नहीं है। जबकि दफ़ा साहबी ने पूछा क्या मुसलमान चोरी कर सकता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ कर सकता है, फरमाया क्या मुसलमान जिना कर सकता है, बोला हाँ जिना कर सकता है, फिर फरमाया साहबी ने क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन हमारे यहाँ तो इतना ये कॉमन है कि बिल्कुल कोई भी झूठ बोल सकता है या कोई भी झूठ नहीं बोल सकता, इसके लिए कोई बिग डील तो आजकल के ज़माने में समझा ही नहीं जाता। और इस रिवायत में अगर आगे देखें वल मुजाहिदु मन जाहद नफ्सहु फी ताअतिल्लाहि वल मुहाजिरु मन हजर अल खताया व ज़ुनूब, के मुजाहिद जो जिहाद करने वाला है वो खुदा की इबादत में अपने नफ्स से जिहाद करता है, और जो मुहाजिर होता है जो हिजरत भी करता है छोटे और बड़े गुनाहों को, सतर्क करता है। ये हिजरत का बताया मतलब, यानी कि जिहाद का मतलब बताया कि अपने नफ्स से करना। ये जो नफ्स से जिहाद को ख़ास तौर से इसीलिए बताया क्योंकि मुसलमान हो गया, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब काम करता रहेगा, लेकिन सबसे जो दुनिया में मुश्किल काम है वो तो अपने नफ्स से लड़ना है। इसीलिए इसे यहाँ पे जिहाद इस हदीस में कहा गया, बल्कि यही असल जो हकीकी जिहाद है यानी जिहाद अकबर है वो यही अपने नफ्स से जिहाद है, क्योंकि ये तो हर वक्त अपने साथ लगा हुआ है। दुश्मन तो फिर कहीं दूर है, कहीं किसी और कंट्री में है, कहीं दूर बैठा है, वो तो हर वक्त सामने नहीं है, लेकिन नफ्स तो हर वक्त सामने है। प्लस दुश्मन वाजे है, दुश्मन तो नज़र आ रहा है। ये नफ्स ऐसी चीज़ है जो बातनी चीज़ है, सॉर्ट ऑफ, जो इंट्रेंसिक नहीं है, ये तो नज़र नहीं आ रही। तो ये अंदर से इससे लड़ना, इसे रोकना, और ये असल जिहाद इसे कहा गया, और इस चीज़ को असल हिजरत के से तशबीह भी यहाँ पर दी गई। और इसीलिए हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की जो हदीस है उसमें बिल्कुल कैटेगोरिकली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा देते फरमाया, ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू वला दीना लिमन ला अहद लहू, कि जो जिसके अंदर इमानत ही नहीं है वो तो उसके अंदर कोई ईमान नहीं है, और जिसके अंदर अहद नहीं है यानी कि अपने जो स्टेटमेंट दिया या वर्ड्स दिए या एक बात की, किसी से कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट को ऑनर ही नहीं करता, तो उसका कोई दीन ही नहीं है ऐसे बंदे का। तो इसके इतनी सख्त वईद, सॉर्ट ऑफ थ्रेटन या डराने की बात की गई। हालांकि इवन दो ये मुसलमान है और हर सूरत में जन्नत एक में एक ना एक दिन तो ज़रूर जाना है इंशाल्लाह इसने, मगर फिर भी इसको इतनी सख्त वईद की बात की गई यहाँ पे। और बहरहाल अगर हम इसे कंक्लूड करते हुए ये देखें कि असल में ईमान का मतलब है क्या चीज़, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में, जो कि हज़रत अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, ये वो हदीस है जो बिल्कुल आखिरी इस्लाम के दौर की हदीस है। शुरू में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने एक मरतबा पूछा था मरल इस्लाम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात एक्सेट्रा ऐसी बहुत सी हदीस है कि ये इस्लाम है। बट ये आखिरी ज़माने की एक हदीस है जिसमें हज़रत अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह ममाक अला हाज़ल अम्र, के आपके साथ यानी इस काम में, ये दीन के अंदर जो आपने यानी शुरू किया इस्लाम, इसमें सबसे पहले आपके साथ कौन था? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुर्रुन व अब्दुन, के एक आज़ाद और एक ग़ुलाम। तो इसमें मुहद्दिसीन कराम ने लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद इसमें हज़रत आज़ाद से मुराद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, और ग़ुलाम से या तो हज़रत बिलाल या हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु, इनमें से कोई मुराद है, और खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा या अली रज़ी अल्लाह अन्हु, ये लोग भी उस वक्त अगरचे मुसलमान हो गए थे, बट ही अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त ही वॉज़ अ किड, ही वॉज़ अंडर एज सॉर्ट ऑफ, और खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा क्योंकि मर्द नहीं थी, शी वॉज़ अ वुमन, तो जो आज़ाद से मर्द मुराद लिया वो अबू बकर, और ग़ुलाम से बिलाल या ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु। बहरहाल तो ये लोग वो लोग थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शुरू से बिल्कुल, क्योंकि इनके साथ थे तो उनका उनके बारे में इशारा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर हज़रत अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? अब पहले तो अज्यूमिंगली तो शायद पहले के अगर देखें कॉन्टेक्स्ट में तो इस्लाम तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर से फरमा रहे हैं तीबुल कलाम व इत्आमुत ताम, कि तुम अच्छी बात करो और भूखे को खाना खिलाओ। यानी कि इस्लाम को जो इसका क्रक्स बताया वो क्या बताया कि आप जब किसी से बात करो, व्हेन यू हैव अ कॉन्वर्सेशन, तो यू नो पोलाइटली या इन अ लाइट टोन मैनर्ड या पाकीज़ा कलाम, जिसे यहाँ पे कहा गया तीबुल कलाम, पाकीज़ा कलाम यानी कि प्योर कलाम, अच्छी बात करो लोगों से और जब खाना और भूखे को खाना खिलाओ, इत्आमुत ताम। फिर इन्होंने पूछा मल ईमान, और ईमान की अलामत क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सब्र वस्समाहा, कि तुम सब्र करो और सखावत करो। तो यहाँ पे भी गौर करने की बात यह है कि सब सब्र से तमाम वो चीज़ें आ गई जो जिससे अल्लाह ने मना फरमाया कि ये नहीं करना, तो अब उस पर सब्र करना है। अगर नफ्स चाह भी रहे तो उस पर रुकना है अपने आप को। और समाहत यानी कि सखावत, जिन कामों का अल्लाह ने ऑर्डर दिया है कि ये करो, नमाज, रोज़ा, ज़कात भी इसमें आ जाता है, तमाम सारे से मामलात, या इससे चैरिटी भी मुराद हो सकता है, गरीबों को की मदद भी मुराद हो सकता है, तमाम वो काम जो करने वाले हैं उसमें बुखल ना किया जाए। समाहत से मतलब सखावत, उसमें बिल्कुल खुले दिल के साथ, ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ ये काम किया जाए। फिर इन्होंने पूछा कि सबसे अय्युल इस्लाम या अफजल, सबसे बेहतर इस्लाम किसका है? तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। वही बात कि वो मुसलमान जिसके ज़बान और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो बहरहाल ये भी जाहिर है क्योंकि एक दूसरी हदीस में आता है, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने हाथ को अपने दोनों एक अंगूठे और उंगली से पकड़ते हुए कि इसको अपने कंट्रोल में रखना, क्योंकि जितने भी मामला जो गुनाह के काम होते हैं दुनिया में, वो इस ज़बान का जो ज़ख़म होता है, तलवार का जो कटा हुआ, वो तो हील हो सकता है, भर सकता है, बट जो ज़बान का किसी ने एक दफ़ा बात कर दी, अब वो वापस नहीं हो सकती। उसमें अनफॉर्चुनेटली पूरी किसी की मेमोरी तो बैठे बैठे इरेज नहीं हो सकती, ज़ाहिर है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसीलिए एक दूसरी हदीस में आता है, मन अज़मना मा बैना लहयी व मन फ़ज़ई अज़्मिन लहुल जन्ना, कि जो कोई अपनी वो दो चीज़ जो उसके मुंह के दरमियान है और उसकी टांगों के दरमियान है, यानी कि ज़बान और उसकी शर्मगाह, यानी कि वो इन दो चीज़ों को अपनी कंट्रोल में करता है, अज़्मिन लहुल जन्ना, मैं उसे जन्नत की ज़मानत या बशारत देता हूँ, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ, बल्कि अज़्मिन लहुल जन्ना। तो ज़बान का जो इस्तेमाल है, जो यूज़ है, उसे कंट्रोल में करना, बिल्कुल मिनिमम इस्तेमाल करना ही बिल्कुल प्रिस्क्राइब्ड है इस्लाम के अंदर इसीलिए। और बहरहाल फिर आगे उन्होंने पूछा कि सबसे अय्युल ईमानी अफजल, के सबसे ईमान अफजल किसका है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्कुन हसनुन, के इस शख्स का जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान महफूज रहें, अच्छा काम करे और अच्छाई करे लोगों के साथ। फिर इन्होंने अमर बिन अफसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि अय्यु सलाती अफजल, के किसकी नमाज सबसे बेटर है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूलुल कुनूत, यानी कि लंबा क़याम करना खड़े होकर। कुनूत के वैसे बहुत से ज़ाहिर मीनिंग्स आते हैं इससे, ताअत यानी कि ओबीडियंस भी मुराद हो सकता है, क़याम यानी खड़ा होना भी, नमाज, सलात, सकूत रोकना किसी चीज़ से, या दुआ, या खुशू, या किरात पढ़ना वगैरह, ये बहुत से मायनों में कुनूत का लफ्ज़ आता है, लेकिन तूल कुनूत से ऑब्वियसली यहाँ पे यही मुराद है कि वो लंबा क़याम करे, यानी नमाज बिल्कुल खुशू और खुजू और तवील करके पढ़ना ही ज़्यादा अफजल कहा, फरमाया। फिर अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अय्युल हिजरत अफजल, कि सबसे अफजल हिजरत कौन सी है? तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन कामों को छोड़ देना जिनसे तेरा रब ना खुश हो, जैसे था अब गज़ा अहब्बा लिल्लाह व अब गज़ा लिल्लाह, जो चीज़ रब को नापसंद हो, अल्लाह को नापसंद हो, अब उस चीज़ से रुक जाना, ये असल हिजरत है, अफजल हिजरत। ये अंतहजरा मा करिया रब्बुक, जो अल्लाह को चीज़ पसंद नहीं है इससे रुक जाना, ये असल हिजरत है। और फिर आगे फरमाया, फ़ाइयुल जिहाद ही अफजल, सबसे बड़ा अफजल जिहाद कौन सा है? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन उकिरा जवादु व उरीका दमुहु, जो जिस शख्स का घोड़ा लड़ाई में मारा जाए और ख़ुद भी शहीद हो जाए, वो सबसे अफजल जिहाद होगा, जाहिर है ऑफ कोर्स, दुश्मन से लड़ते हुए जो बंदा हो गया। और फिर इन्होंने पूछा कि ये जो अय्युस साआति अफजल, जो टाइम है, साआ कहते हैं टाइम को, या ये जो रनिंग जो आपका प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर टेंस हो या प्रेजेंट हो, लेकिन एक वक्त, सबसे अफजल वक्त कौन सा है, ये कह लें कि सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जौफुल लैल अल आखिर, कि रात की जो बिल्कुल सेंटर, जौफ कहते हैं पेट को वैसे, तो जौफुल लैल यानी कि बिल्कुल सेंटर ऑफ नाइट, जो सबसे रात का आखिरी वक्त है, वो सबसे ज़्यादा अफजल है। एनी हाउ, तो इससे ये पता चलता है कि इस्लाम और ईमान में भी स्लाइड कहीं ना कहीं एक थिन लाइन है जो ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है और उसे सीखने के लिए ज़ाहिर है इस्लाह की। और असल में जो ईमान का मकसद है वो ये है, यही है कि अब अहब्ब लिल्लाही अब ग़ज़ल लिल्लाही, तो कोशिश यही करनी चाहिए हर मुसलमान को कि वो हुब भी अल्लाह के लिए हो और अब बुग्ज़ भी अल्लाह के लिए हो। और ये अटेन करने के लिए ज़ाहिर है अपने नफ्स को मारना जैसे कि हदीस में बताया गया, और अपने नफ्स पर जिहाद करना असल जिस जो जिहाद अकबर भी है उस पे फोकस करना, और अपने आप को कंट्रोल, और फिर अस्सब्र व समाहा यानी कि सब्र करना, कोई अगर इस काम के अंदर रास्ते में कोई मुश्किल आती है उस पर सब्र करना, और समाहा यानी कि अच्छे काम करने से फिर रुकना नहीं, ये नहीं कि अगर एक कोई बुरा काम कर रहा हो तो दूसरा अच्छा काम करना भी छोड़ दे, दैट इज़ नॉट द केस, इस द अदर वे अराउंड, कि अगर कोई किसी से बुराई कोई बुरा काम हो भी जाता है तो एक रिवायत में आता है वो उस पर इस्तग़फ़ार करे, और फिर सखावत के अंदर सुस्ती ना करे, और बिल्कुल खुले हाथों से अपने दिल के साथ खुले दिल के साथ सखावत अपनी ज़िंदगी में लाए, तो इंशाल्लाह वो ज़की एक ना एक दिन ज़रूर मोमिन बन सकता है। अल्लाह हम सबको सही मायनों में मोमिन बनने की तौफीक अता फ़रमाए। आज के लिए इतना ही। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।